बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब।
वालेकुम सलाम।
आपकी नज़र से एक अनदोना वाक़या गुज़रा हाल ही में जो लाहौर में पेश आया हाई कोर्ट के सामने। हर एक का दिल उसके लिए बहुत ख़राब है और सच्ची बात यह है कि इसके बाद आदमी का दिल ये चाहता है कि इस सोसाइटी को कहाँ ले जाए, क्या करे इसके साथ, यानी हम किस जगह चलते चले जा रहे हैं। पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस ज़मन में वो ये है कि क्या पसंद की शादी करार वाकई इतना बड़ा जुर्म है हमारे दीन में इस्लाम?
देखिए, जब हमारे यहाँ निकाह होता है तो हम सब जानते हैं कि जो निकाह खां हैं वो निकाह पढ़ने से पहले इस बात का ऐलान करते हैं कि दुल्हन ने अपनी रजामंदी का इजहार दस्तखत करके कर दिया है, और दूल्हा की रजामंदी वो लोगों के सामने उनसे पूछकर बयान करते हैं। ये खुद इस बात की गवाही है कि हमारे दीन में निकाह होता ही उस वक्त है कि जब दूल्हा और दुल्हन की रजामंदी शामिल हो। ये रजामंदी क्या कोई महज दिखावा है? क्या ये उनको मजबूर किया जाता है? या खुदा का दीन जैसे हर मामले में जो बात कहता है पूरे वजाहत के साथ और उसकी सही स्पिरिट में कहता है, बिल्कुल यही मामला यहाँ भी है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अगर एक मर्द और एक औरत आपस में मिलकर ज़िंदगी भर के संजोग के लिए वो एक फ़ैसला कर रहे हैं कि जिसका ऐलान होने वाला है, तो वो दोनों खुद अपने अपने तौर पर रज़ामंद हों। इस रज़ामंदी को हासिल करने के लिए कुरान मजीद से भी ये मालूम होता है कि मारूफ में, यानी जो हमारे यहाँ शराफत के मेयारात मौजूद हैं उनकी हदूद के अंदर रहते हुए जिस तरह से भी वो ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए, और ये निकाह की शर्त लाजिम है।
वली की रजामंदी भी तो शर्त लाजम।
ये हमारे यहाँ एक ऐसा ओपिनियन है कि जिसमें इख्तलाफ है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि बेहतर मतलूब और पसंदीदा चीज़ ये है कि वालिदैन या दूसरे वली अगर हैं उनकी रजामंदी भी शामिल हो। लड़के और लड़की को हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके वालिदैन, उनके वालिदैन, उनके घर वाले भी इसमें रजामंदी के साथ शामिल हों, इसलिए कि बहरहाल ये फ़ैसला सिर्फ़ एक मर्द और एक औरत का मिलके मियाँ बीवी बनने का नहीं है बल्कि ख़ानदानों के जुड़ने का है। तो इस वजह से उनको राज़ी करना बहरहाल ज़रूरी है। ताहम अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ऐसा मौका आ जाए कि जब वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे और लड़का या लड़की ये महसूस करते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली और उनकी ज़िद की कोई बुनियाद भी नहीं है, और वो इस बुनियाद पर वो इख्तियार के जो अल्लाह ने उनको दिया है उसकी बुनियाद पर वो किसी काजी, किसी कोर्ट के जज के पास चले जाते हैं और अपना मामला उनके सामने पेश करते हैं, और वो उनकी बात को सुनने के बाद ये फ़ैसला करते हैं कि वाकई मामला है तो अफसोसनाक, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला तो बुनियादी तौर पर लड़के और लड़की का है, और वो उनके हक़ में फ़ैसला करके जो निकाह की ज़रूरी शरायत हैं उनको पूरा करके निकाह का ऐलान करते हैं जैसे ऐलान किया जाता है, यानी सब घर वालों को मालूम होता है, कुछ छुप छुपा के निकाह नहीं होता बल्कि बाकायदा उसका ऐलान होता है। तो कानूनी तौर पर आप इसको गलत, नाजायज़ और हराम नहीं कह सकते।
नहीं, लेकिन अगर इसमें सूरत ये हो गई है कि लड़का और लड़की ने अदालत में जाकर शादी की और उसके बाद अपने अपने घर चले गए, ना उधर के ख़ानदान को घर वालों को पता है कि ये शादी हो चुकी है और ना इधर के, तो फिर निकाह की क्या हैसियत?
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये तो बादले ना खास्ता गवारा किया जा सकता है कि वालिद या वालदा दिली तौर पर आमादा नहीं है, अफसोसनाक बात है, लेकिन भारत मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो आपको एक जानब या दूसरी जानब फैसला करना होगा, लेकिन ये बात कि उनको मालूम ही नहीं है ये नहीं हो सकता। ऐसा काजी को चाहिए कि वो इस बात से गुरेज करे, जज को चाहिए कि वो इसका एहतमाम करे कि इसकी इत्तला सबको हो। उसकी वजह यह है कि निकाह में एक शर्त लाजिम ये है कि आप उसका ऐलान करें, और फिर चाहिए जी कि लड़के और लड़की को कि वो फेस करे उसको।
यानी पसंद की शादी मसला नहीं है, लेकिन घर वालों को पता होना ज़रूरी है, मालूम होना, ऐलान होना चाहिए कि निकाह हो गया। इसमें एक बड़ी अहम बात जो हुई और कुछ लोगों ने उसको एक दूसरा रुख दे दिया, ये आपको मालूम है कि उनको ईंटें मार मार कर यानी जाँ भाग कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। इस सूरत के अंदर जो एक नई चीज़ पैदा हो गई वो ये कि कुछ लोगों ने इसको संसारी का नाम देना शुरू कर दिया कि क्योंकि उन्होंने ये शादी कर ली थी और ये इतला भी है कि वो खातून जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको इस हालत में कत्ल कर दिया गया, तो संसारी का मामला यानी रुख ये देने की कोशिश की गई कि क्योंकि इन्होंने पसंद की शादी कर ली थी और इनका ये बच्चा अब क्योंकि जायज़ नहीं रहा, यानी ये एक रुख देने की कोशिश की गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय?
देखिए, मैंने एक और सवाल के जवाब में आपको बताया था कि जो मुल्क का कानून है ना, वही है असल के जिसको के नाफिज रहना चाहिए। हमारे जजेस असल में मुल्क के कानून को नाफिज करते हैं, उसके मुताबिक फैसला करते हैं। मैंने अभी जो बात की निकाह की शरायत के बारे में, ये मैंने अपनी ओपिनियन बयान की, यही मेरे नज़दीक सही तरीक़ा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी जज ने ऐलान कर दिया, तो मैं ये एज्यूम करूँगा, फ़र्ज़ करूँगा कि उन्होंने अपना इत्मीनान कर लिया। अब ये निकाह है, ये हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक भी और हमारे दीन के हुक्म के मुताबिक भी वो दोनों मियाँ और बीवी हैं जो एक जायज़ निकाह के बंधन में बंध गए हैं। इसके ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स ऐलान करता है तो वो हमारे मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ बगावत करता है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत ने उस निकाह को रजिस्टर कर लिया है तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि अदालत ने अपना इत्मीनान हर लिहाज से कर
फैसला सुना दिया, उन्होंने फैसला सुना दिया है। आपको कोई एतराज़ है, आप अदालत के पास जाएं। इसके अलावा आप हाथ नहीं उठा सकते, आपको ये इख्तियार नहीं है। आप माँ हैं या बाप हैं या कोई भी हैं। और जो ये वाकया हुआ है, ये वाकया तो इतना अंदोहनाक है कि इसको तो सुनकर इंसान सकते में आ जाता है कि बाप ने, भाइयों ने उसको पत्थरों से मारा, ईंटों से मारा और मार मार के उसकी जान ले ली। ये तो मालूम होता है कि उस तरह के दरिंदे हैं जैसे कि अरब माशरे में उस ज़माने में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। तो अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कुरान मजीद में कि क़्यामत के रोज़ इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, उस दिन जब जिंदा दरगोर बेटियों से ये पूछा जाएगा किस जुर्म की पादाश में उनको जिंदा दरगोर किया गया। यही सवाल इस शख्स से इसके बेटों से भी पूछा जाएगा कि जब उसने निकाह कर लिया, अपनी पसंद से कर लिया, वो शख्स उसका शौहर था, तुम्हें क्या हक हासिल था कि तुम ये इकदाम करते? और किसी भी सूरत में बात यह है कि सबसे ज़्यादा गैरत को ललकारने वाली बात तो ये हो सकती है ना कि किसी शौहर के सामने उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ जिना कर रही हो। खुदा ताला ने उसका कानून सूरह नूर में बयान किया है, लयान के कानून के सूरत में, और ये फरमाया है कि उस औरत को के ख़िलाफ़ उसका शौहर चार मर्तबा ये कहेगा कि उसने ये काम किया है और पांचवी मर्तबा कहेगा कि उस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठा है। और उसकी बीवी अपने आप को अल्लाह की पकड़ और सज़ा से बचा सकेगी अगर वो भी इसी तरह से चार मर्तबा गवाही दे और पांचवी मर्तबा कहे कि उस पर लानत हो अगर वो सच्चा है। तो शौहर को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अगर अपनी बीवी को जिना करते हुए देखे,
इतने बड़े जुर्म
में कि वो उसके खिलाफ कोई जिस्मानी इकदाम करे और उसको मारे या उसको कत्ल करे, किसी और कोई हक हासिल नहीं है। ये इंतहाई काबिल मजम्मत जुर्म हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। पूरे माशरे को खड़े होना हो जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने ये काम किया, और मुझे यकीन है कि हमारी अदालत उनके खिलाफ सही कार्रवाई करेगी।
सब माशरा तो खड़ा था वहाँ, यानी जो इसमें जो अगली बात बहुत अहम है वो ये कि वहाँ लोग खड़े थे, वहाँ एक भीड़ थी, वहाँ रिपोर्ट ये किया जा रहा है, वल्लाह आलम ये बात ठीक है या नहीं, वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, किसी आदमी ने आगे बढ़कर उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ये सब वाकया हाई कोर्ट में लाहौर के दिल में आप ज़रा तसव्वुर करें कि माल रोड पर हुआ है और कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा जिसने रोका हो। ये हमारी सोसाइटी है, यानी क्या करें, वो लोग रोक दें, हाथ से रोक दें, नहीं बाज आते तो वो भी वही काम करें जो वो कर रहे हैं, यानी उनको रोकें, पकड़ें, मारें, क्या करें?
देखिए जवाद, ऑनेस्ट टू गॉड मैं तो ये समझता हूँ कि शायद कोई एक ही वजह मुझे समझ में आती है कि वो सारे लोग इतने सकते के आलम में होंगे कि उनसे कोई फैसला नहीं हो पा रहा होगा। वो लोग तमाशाई बन के खड़े हुए थे, ये तो नाकाबिले तसव्वुर, नाकाबिले बर्दाश्त है, ये तो यानी बेगैरती की इंतहा है। उन शख्स का, उन लोगों का, तमाम लोगों का क्या ईमान ख़त्म हो गया था, उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई थी। अगर वो अपने आप को उस वक्त बेबस महसूस करते थे, कम से कम वो चीखते, किसी तरह से जाके उनको पकड़ते, ये बात के वो देख रहे हैं और उनके सामने एक लड़की को और का बाप और उसके भाई मार रहे हैं और वो मर गई और वो देख रहे हैं।
अच्छा, बाप और भाई है ना, बाप और भाई हैं, क्यों रोके वो?
हाँ, फिर वो क्या कर रहे हैं? वो तमाशा देख रहे हैं, या वो भाग जाते, वो कहते हैं कि हमसे नज़ारा नहीं देखा जा रहा, या वो चीखते कुछ करते। जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले तसव्वुर है। मैं तो सोच नहीं सकता कि कैसे हो सकता है कि इंसान ये चीज़ देख रहा हो, उसके सामने हो रहा हो और वो बेहस होकर खड़ा हो। क्या कर रहे थे? यानी वो मंजर देख रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे। मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है। अगर ये बेहसी है तो सच्ची बात यह है कि फिर अपनी इस कौम की बेहसी पर मातम करना चाहिए, इसलिए कि फिर हम मर गए हैं, हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि शायद ऐसा मामला नहीं होगा। कुछ लोग सकते में होंगे, कुछ लोग अचानक उनके लिए एक शॉकिंग चीज़ होगी और वो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वरना तो जाके पीछे से पकड़ लेना चाहिए था, या चीखना चाहिए था, या फिर चले जाना चाहिए था।
यहाँ वो जो बुराई को हाथ से रोकने वाला मामला हमें रोज सुनने को मिलता है हर मेंबर,
ये मौका था,
ये मौका था,
ये मौका था कि लोग ये करते कि फल युगैर हु भी यदि, अपने हाथ से रोक लेते उनको। आखिर वो कितने लोग थे? चार होंगे, छः होंगे, आठ होंगे,
टोटली पाँच सात।
जाहिर है कि सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं और वो बेहिसी से वो उसका तमाशा देख रहे
हैं। कानून भी मौजूद था जी,
पुलिस मौजूद थी,
पुलिस मौजूद, रिपोर्ट यही है कि पुलिस मौजूद।
तो समझ में नहीं आती, इसकी तो तहकीक होनी चाहिए। और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि बात यह है कि जिंदा कौमें जो होती हैं ना, उनके यहाँ अगर अब इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो फिर ये तय कर लेती हैं कि ये तो हो गया, बड़ी बदनसीबी है, लेकिन हम इसके बाद ऐसे इकदाम करेंगे कि आइंदा इंशाल्लाह इस तरह का कोई हादसा नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि हमारी कौम भी अगर ज़िंदा है तो हमें यह तय कर लेना चाहिए कि उस दिन जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इंतहाई ट्रेजिक हादसा हुआ है, जिस पर कि हम सारी की सारी कौम शर्मिंदा भी हैं और किसी हद तक मुजरिम भी हैं, आइंदा ये काम नहीं होगा, हमें यह फैसला करना चाहिए।
यानी पसंद की शादी को ऐसा जुर्म नहीं है जिस पर ज़िंदगी ले ली जाए, इनको जीने का हक है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया और बड़े अहम मौजू पे आपसे हमने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद सवालात आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।